नमस्कार, एसबीएस हिंदी से मैं हूं साहिल मक्कड़ और आज हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों के बारे में। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए है मेलबर्न से प्रोफेसर प्रदीप तनेजा। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा ऑस्ट्रेलियन सरकार के फैसले के बारे में, जिन्होंने जो है $36 मिलियन दिए हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके लिए। तो इसका क्या मतलब है हमारे लिए?
देखिए, ये जो $36 मिलियन का अनाउंसमेंट आज हुआ है, इसका ज्यादातर पैसा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जो विदेश मंत्रालय है पास जाएगा, और उसका ज्यादातर खर्चा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की बेंगलुरु में जो नई कॉन्सुलेट खुल रही है उसमें लगेगा। तो ये एक्स्ट्रा बजट है टू सपोर्ट ए न्यू कॉन्सुलेट इन बेंगलोर। और तो मतलब ऑस्ट्रेलिया की, पहले से देखिए जो दिल्ली में हाई कमीशन है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने बॉम्बे, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पहले से कॉन्सुलेट खोली हुई हैं, लेकिन अब एक फैसला किया गया है पिछले महीने जब प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने बेंगलुरु टेक समिट में एक स्पीच दी थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया बेंगलोर के साथ एक अच्छे संबंध बनाएगा और बेंगलोर बेंगलोर में ये जो एक नया टेक्नोलॉजी, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, वो भी खोला जाएगा। तो बेंगलोर को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के जो संबंध हैं उसमें बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर जैसे आपको मालूम है पहले से ही इंडिया का आईटी हब है, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया की डिप्लोमेटिक जो है उपस्थिति होनी चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए, इसलिए वहाँ कॉन्सुलेट खोली जा रही है।
जी, तो प्रोफेसर तनेजा, हमने ये भी देखा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल ही अपने रिश्ते को बढ़ाकर, बायलेटरल रिलेशन से बढ़ाकर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिलेशन क्या होता है, इसका क्या महत्व है हमारे लिए?
इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड में देश आपस में कई तरह के शब्द यूज करते हैं अपनी रिलेशनशिप को, मतलब उसका वर्णन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की रिलेशनशिप बायलैटरल रिलेशनशिप थी, अच्छी थी, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थी। तो पिछले साल जब एक वर्चुअल समिट हुआ था प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मॉरिसन के बीच में, तो उस समय इन्होंने एक समझौता साइन किया था कि ये दोनों देश जो हैं अपने संबंधों को और बढ़ाएंगे और वो संबंध स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो जाएगी। जो कॉम्प्रिहेंसिव है उसका, उसके मेरे ख्याल से दो पहलू हैं। एक पहलू जो है वो रक्षा संबंधों को बढ़ाने का है, दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंधों को बढ़ाने का है, तो ताकि ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी वगैरह के बीच में जो एक्सरसाइजेज हैं, संबंध हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम है, आदान प्रदान है, उसको बढ़ाया जाए। तो पहला पहलू जो है वो रक्षा के क्षेत्र में है। दूसरा पहलू जो है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। टेक्नोलॉजी खासतौर से ये जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, तो मतलब बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज हैं दोनों देशों के विकास के लिए और दोनों देशों की सुरक्षा के लिए भी। तो इन टेक्नोलॉजीज को, मतलब इसमें दोनों देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाया जाए, कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, तो उसके लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो दूसरा पहलू है वो टेक्नोलॉजी को एम्फेसाइज करता है।
जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये फैसला जो हमारी जो पार्टनरशिप को हमने बढ़ा दिया है, कॉम्प्रिहेंसिव किया है, क्या ये चाइना को देखते हुए किया गया है?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को समझने के लिए उसकी बैकग्राउंड को समझना थोड़ा जरूरी है। और बैकग्राउंड कुछ ऐसी है कि कोल्ड वॉर के दौरान, शीत युद्ध के दौरान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो अलग अलग साइड पर थे। भारत वैसे गुटनिरपेक्ष देश था, नॉन अलाइन कंट्री था, लेकिन भारत के सोवियत यूनियन के संबंध काफी अच्छे थे। सोवियत यूनियन से भारत के संबंध काफी अच्छे थे।
जी
1971 में, 1971 में इंदिरा गांधी ने जो बांग्लादेश की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, उससे पहले सोवियत यूनियन के साथ एक 20 साल की एक ट्रीटी भी साइन की थी। तो उस समय ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका उस टाइम पाकिस्तान की तरफ से, मतलब जो कोशिश थी अमेरिका की वो थी कि पाकिस्तान की इसमें विजय हो, तो ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका का सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका का समर्थन कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1980 के दशक में जैसे चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा थोड़ा खोला, और बाद में 1990s में चाइना ने काफ़ी अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, तो उस टाइम चीन ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी एक मार्केट के हिसाब से चीन काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ज़्यादातर डिप्लोमेटिक एनर्जी जो थी उसको चीन के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने में लगा दिया। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंध उन दिनों में काफ़ी मतलब कमज़ोर थे। ऑस्ट्रेलिया का हाई कमीशन तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत, इंडिया में बहुत पहले से है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो बने रहे हैं, लेकिन कहा जाता है ना जैसे कि पहले ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध जो है वो तीन चीज़ों तक सीमित थे। कॉमनवेल्थ, मतलब दोनों कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, दोनों कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, क्रिकेट एंड करी, करी मीनिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन फूड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्लीशे है एक तरह से, लेकिन ये भी सच भी है इसमें कुछ कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो संबंध थे वो मतलब कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। और उस टाइम भारत तो मतलब जो इंडियन कम्युनिटी है, भारतीय समुदाय ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटा सा था। मैं देखिए 36 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आया था, उस टाइम गिने चुने भारतीय लोग यहाँ पर थे ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन पिछले 20 सालों में क्या हुआ है कि भारतीय समुदाय माइग्रेशन के जरिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो जिसको डायस्पोरा कहते हैं, जो भारतीय डायस्पोरा है वो अब काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया, तो उसका भी काफ़ी योगदान है। तो भारतीय समुदाय यहाँ पर है, उसका भी काफ़ी योगदान है। तो सिर्फ चीन ही एक मतलब उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, जो ऑस्ट्रेलियन जो इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पर उनका भी काफ़ी योगदान है इन दोनों के संबंधों को सुदृढ़ करने में।
जी प्रोफेसर तनेजा, आपने बताया कि दो कारण है, एक तो ऑब्वियस है कि हम चीन को काउंटर करना चाहते हैं, दूसरा कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया में भारत समुदाय की संख्या भी अब काफी बढ़ गई। जैसे आप बता रहे हैं कि जब आप 36 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आए तो बहुत छोटा समुदाय था, पर आज हम डेट में देखें तो भारतीय समुदाय जो है वो शायद दूसरे तीसरे नंबर पे आता है एज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो एक ये भी एक रीजन हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध जो है आगे जाके और बेहतर हो।
देखिए मुझे लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खासतौर से जो टेक्नोलॉजी का एरिया है, अब प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने एम्फसाइज किया है कि साइबर टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, या जो थोड़ा रेयर अर्थ्स वगैरह, जो क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, उनमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में काफ़ी कोऑपरेशन होगा। देखिए सरकार, दो सरकारें कितना भी कहलाएं कि हम सहयोग करना चाहते हैं, जब तक जो बिजनेस है या इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, जब तक उनके बीच में कोऑपरेशन नहीं होता है तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो है किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकती कि आप जो है किसी दूसरे देश के साथ सहयोग को बढ़ाइए, वो उसको फैसिलिटेट कर सकती हैं, थोड़ी बहुत मदद कर सकती हैं, लेकिन जो सहयोग है वो इंस्टीट्यूशंस करेंगे या बिजनेसेस करेंगे या इंडिविजुअल्स करेंगे। तो जो भारतीय समुदाय इतना बड़ा है ऑस्ट्रेलिया में, उसका देखिए आगे जाके काफ़ी बड़ा योगदान होगा। एक तो बात यह है कि भारत से जो माइग्रेंट्स यहाँ पर आते हैं ज़्यादातर काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं
जी।
तो ये जो माइग्रेंट्स आते हैं ये आकर यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कंपनीज में, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में, ऑस्ट्रेलियन रिसर्च सेंटर्स वगैरह में काम करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे वो वहाँ काम करेंगे तो वो अपनी जो उनकी भारत की जो उनकी नॉलेज है, इंडिया की जो नॉलेज है, इनसाइड नॉलेज जो है उसको वो इस्तेमाल कर पाएंगे, ताकि उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, रिसर्च सेंटर हों या कंपनियां हों, वो किसी तरह से उस जानकारी को, उस नॉलेज को लेकर उसको मतलब एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसको कहते हैं ना, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। ये लोग जो है आगे जाके भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, बिजनेस कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसको बढ़ावा देने में मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों की होगी।
जी मेरा आखिरी सवाल यह है प्रोफेसर तनेजा आपसे कि आपने देखा होगा कि हाल में इंडिया के साथ ट्रैवल बैन किया गया था ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया सरकार का एक सॉवरन डिसीजन है, इस पे तो कोई कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारे रिश्तों पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, कहीं खटास आ जाती है कि भारत के साथ, क्योंकि भारत में उस समय कोविड के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे और उसके बाद से ट्रैवल बैन हुआ, फिर उसके बाद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके यहाँ आने पर भी प्रतिबंध था, वो भी नहीं आ सके, तो क्या उससे कोई रिश्तों पे खटास आएगी या एक दिस इज अ टेम्परेरी ब्लिप?
मुझे खटास जो आई है वो ज्यादातर इंडिविजुअल लेवल पर आई है। इंडिविजुअल लेवल पर आई है मतलब जो स्टूडेंट्स थे, जो बेचारे इंडिया गए थे छुट्टियां मनाने गए थे, वहाँ फंस गए, वहाँ से वापस नहीं आ पाए और अपनी पढ़ाई जो है वो यहाँ पर मतलब जारी नहीं कर पाए क्योंकि जूम पर पढ़ते रहे, लेकिन वो बात नहीं है। अच्छा, दूसरा फीस उनको पूरी देनी थी, तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में जहाँ वो एनरोल थे, चाहे वो इंडिया में थे, लेकिन अगर उनको सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है जूम पर भी, तो उनको पूरी फीस देनी थी। अच्छा, जब ऑस्ट्रेलिया से इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, तो जैसे आपको मालूम है ज़्यादातर जो है वो कोई ना कोई काम ढूंढते हैं
जी
ताकि यहाँ पर उनकी कुछ इनकम हो, ताकि जो उनकी फीस वगैरह है या रहने का खर्चा है उसको कम से कम कुछ जो है वो यहाँ से काम करके कवर कर पाए। तो वो उन लोगों को दिक्कत हो रही थी, काफ़ी फाइनेंशियल हार्डशिप थी क्योंकि उन लोगों को ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की फीस देनी पड़ रही थी वहाँ से, और ये कोई ऑस्ट्रेलियन इनकम वहाँ पर नहीं थी उनके पास। तो जो इंडिविजुअल लेवल पर मुझे लगता है थोड़ी सी कड़वाहट है, थोड़ी सी बिटरनेस है, लेकिन जहाँ तक भारतीय सरकार का सवाल है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा जो है असर पड़ा है बायलैटरल रिलेशनशिप पर।
प्रोफेसर तनेजा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे जानकारी शेयर की। मैं अपने श्रोताओं को एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि ये प्रोफेसर तनेजा के विचार निजी विचार है, इससे SBS हिंदी ना तो सहमत है ना ही इनका विरोध करता है। हमसे जुड़ने के लिए प्रोफेसर तनेजा बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया साहब।